यशाया अध्याय 23। अध्याय 23 में वो सोर के लिए परमेश्वर का वचन लाता है। सोर एक बंदरगाह था, वहां के निवासियों को फिनिके वासी कहते थे। जो लोग इतिहास के ज्ञाता है वे जानते हैं कि उनके जहाज भूमध्य सागर में तैरते रहते थे। सत्य तो ये है कि वे अफ्रीका के केप हॉर्न तक सामान और सौदा लेने जाया करते थे। उनकी जल सेना का समुद्र पर राज था। उन दिनों जल सेना का कार्य व्यापार करना था। इस प्रकार सोर विश्व का व्यापारिक केंद्र था। वहां नाना प्रकार का सामान उपलब्ध था। उन दिनों लगभग संपूर्ण व्यापार का केंद्र सोर नगर ही था। इसी व्यापारिक केंद्र के लिए यशया परमेश्वर का वचन लाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एहेस्केल भी अध्याय 26 में सोर के विनाश की भविष्यवाणी देता है। ये भविष्यवाणी यशया की भविष्यवाणी से अधिक विस्तार में दी गई है। एहेस्केल कहता है कि उनके विरुद्ध दो दुश्मन खड़े होंगे। पहला दुश्मन उनकी शहरपनाह को ढा देगा और नगर को नाश करेगा, और दूसरा दुश्मन मलबे को उठाकर समुद्र में डाल देगा और धूल को खरोच कर समुद्र में डालेगा। वो सोर की घेराबंदी को विभक्त करेगा। वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो वैसा करेगा। इसके बाद सर्वनाम को बहुवचन में प्रयोग किया गया है, वे और वे और वे। इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि नबूकदनेस्सर ने सोर को 13 वर्ष तक घेर रखा था और उस पर अधिकार किया, परंतु बाइबल के अनुसार उसे वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर के पास थल सेना थी और फिनिके वासियों के पास जहाजी बेड़ा था। जब नबूकदनेस्सर उन्हें घेरे हुए था, तब उन्होंने अपना नगर पूरा का पूरा लगभग 1 किलोमीटर दूर तक द्वीप पर ले जाकर बसा लिया। इस प्रकार जब नबूकदनेस्सर ने उसमें प्रवेश किया तो वहां उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एहेस्केल ने आगे एक असामान्य बात कही थी। एहेस्केल अध्याय 26 पद 12। तेरे पत्थर और काट और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे। भविष्यवाणी में ऐसी बात कहना विचित्र होता है। नबूकदनेस्सर ने लगभग 200 वर्ष बाद, जब सिकंदर महान अपने विजय अभियान पर निकला, तब उसने सोर वासियों से कहा कि वे उसके साथ संधि कर ले, तो उनका उत्तर था, वे उस द्वीप पर सुरक्षित है, वो क्यों मजाक करता है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः उसने सीदोन से जहाज लिए, परंतु उसका आक्रमण विफल कर दिया गया। इसलिए उसने पुराने नगर की चट्टानों और लकड़ियों को समुद्र में डालना आरंभ कर दिया, ताकि उस द्वीप तक पहुंचने का मार्ग बना पाए और उसके ऊपर धूली डालकर अपना सामान ले चलने का समतल मार्ग बनाने लगा, और उसने इस मार्ग को तैयार कर ही लिया। इस प्रकार एहेस्केल की असामान्य वरन विचित्र भविष्यवाणी पूर्ण हो गई कि वो धूल को खरोच कर समुद्र में डालेगा। अंत में सिकंदर ने सोर को जीत ही लिया और बाइबल के अनुसार उसे नाश कर दिया। एहेस्केल 26 अध्याय 14 पद। तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा। वर्षों तक तो लोग वहां के खंडरों को देखकर यही सोचते रहे कि वो एक प्रायद्वीप है, परंतु जब वहां का सर्वेक्षण किया गया तो उन्होंने पाया कि ये तो ठीक वैसा ही है जैसे इतिहास में वर्णन है। ये सोर की द्वितीय नगर है, और जिसे वे प्रायद्वीप समझ रहे थे वो सिकंदर द्वारा बनाया गया सेतु था। सिकंदर की सोर पर विजय का वर्णन करने से ऐसा लगता है कि सिकंदर बाइबल पढ़कर गया होगा, क्योंकि उसने वैसा का वैसा ही किया जैसे बाइबल में लिखा था। रोचक बात तो यह है कि जब प्राचीन सोर का स्थान खोजा गया और उन्हें ये बोध हुआ कि ये प्राचीन सोर है, तब उन्होंने वहां देखा कि मछियारे चट्टानों पर जाल सुखा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एहेस्केल ने कहा था, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा। देखिए परमेश्वर का अद्भुत वचन कैसे पूरा होता है। एहेस्केल अपने अध्याय 28 में सोर के राजा के लिए विलाप करता है, परंतु बीच में ही वो शैतान को संबोधित करने लगता है, क्योंकि उसके राजा के ऊपर शैतान का हाथ था। एहेस्केल कह रहा है, एहेस्केल अध्याय 28 पद 12 और 13, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी गई थी। एहेस्केल शैतान का वर्णन कर रहा था। सोर व्यापार तंत्र का केंद्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर मनुष्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे मनुष्यों के शोषण से अप्रसन्न होता है। यही कारण है कि सोर के व्यापार तंत्र के कारण परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया। प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय में लिखा है, व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि वे उसके द्वारा धनवान हो गए थे। परंतु आगे वो कहता है, आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा पलटा लिया है। जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे तब वहां व्यापार नहीं होगा। प्रत्येक जन जो प्यासा होगा आएगा और सेत मेत पिएगा और खाएगा। परमेश्वर के राज्य के युग में व्यापार समाप्त हो जाएगा। उस युग में हम सब मिल बांट कर खाएंगे। उस युग में कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी का शोषण नहीं करेगा। इस प्रकार यहां देखने को मिलता है कि यशया भी व्यापारिक केंद्र सोर के प्रति चिंता करता है। यशाया अध्याय 23 पद 1, हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वो उजड़ गया, वहां ना तो कोई घर और ना कोई शरण का स्थान है। ये बात उनके कितियों के देश में से प्रकट की गई है। अतः सोर निर्जन और उजाड़ हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था महान व्यापारिक नगर का हाल। यशाया अध्याय 23 पद 2 से लेकर 14 तक, हे समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, छुपा रहो, शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वो और जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने ये कहा है, मैंने ना तो कभी जनमाने की पीड़ा जानी और ना बालक को जन्म दिया और ना बेटों को पाला और ना बेटियों को पोसा है। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शिश को जाओ, क्या ये तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाएं। हे तर्शिश के निवासियों, नील नदी की नाई, अपने देश में फैल जाओ, अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों के नाश करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं, उठ पार होकर कितियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन ना मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वो जाति अब ना रही। अशूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडर कर दिया। हे तर्शिश के जहाजों, वो बाबुल वासियों की विजय की भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया अध्याय 23 पद 14। हे तर्शिश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजाड़ गया है। फिनिके की विशाल नौसेना। यशाया अध्याय 23 पद 15 से लेकर 18 तक। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या की नाई गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्य, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वो फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वो ना भंडार में रखी जाएगी ना संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। भजन संहिता में एक भजन है जो सोर के बारे में कहता है कि वो यीशु के राज्य में अपने उपहार लेकर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सोर का फिर उदय होना है कि प्रभु के राज्य के लिए सामग्री पहुंचाए।